चलिए आज की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर कोई ये कहे कि इसी वक्त 21वीं सदी की इस मॉडर्न दुनिया में करीब 20 करोड़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोई ऐसा चमत्कार देखा है जो सीधे सीधे विज्ञान के नियमों को तोड़ता है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी?
ज्यादातर लोग तो शायद इसे सिरे से खारिज ही कर देंगे या फिर सोचेंगे कि कोई पुरानी कहानी सुना रहा है।
बिल्कुल, हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि चमत्कार तो बस पुराने जमाने की किताबों में होते थे, लेकिन आज हम जिस स्रोत का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सच में इस पूरी धारणा को हिला कर रख देता है।
सही कहा। तो आज हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर का एक बहुत ही डीप और रिसर्च पर आधारित लेक्चर है। इसका नाम है एक्ट्स लेक्चर 5 मिरेकल्स एंड इवेंजेलिज्म।
और मैं यहाँ सुनने वालों को पहले ही साफ कर दूं कि हमारा मकसद यहाँ किसी भी धार्मिक मान्यता को प्रमोट करना नहीं है। हम बस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक और बौद्धिक पहेली को डिकोड कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, निष्पक्ष तरीके से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आधुनिक चमत्कारों के दावे हैं और जो पश्चिमी दुनिया का दार्शनिक संदेहवाद है, मतलब फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म, और पहली सदी के उस छोटे से यहूदी आंदोलन के रातों रात फैलने की जो रणनीतियां थीं, उनके बीच आखिर कनेक्शन क्या है?
तो शुरुआत ही एक ऐसे डेटा से करते हैं जो सच में दिमाग चकरा देता है। डॉक्टर कीनर अपने लेक्चर में प्यू फोरम के 2006 के एक सर्वे का जिक्र करते हैं, और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था।
नहीं, ये बहुत बड़े स्केल पे था। ये सर्वे दुनिया के केवल 10 देशों में किया गया था, और वो भी खास तौर पर पेंटेकोस्टल और करिश्माई ईसाइयों के बीच।
और जो लोग इन टर्म से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दें कि ये वो समूह है जो ईश्वर के सीधे अनुभव और अलौकिक चमत्कारों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना?
एग्जैक्टली। और इस सर्वे का जो रिजल्ट था, लगभग 20 करोड़ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने सच में दैवी चमत्कार देखे हैं या अनुभव किए हैं।
20 करोड़, मतलब ये कोई छोटा नंबर तो है नहीं।
बिल्कुल नहीं, और सिर्फ यही नहीं, 39% जो बाकी साई थे उन्होंने भी ऐसे ही अनुभव बताए। तो ये डेटा उस आम सोच को तोड़ देता है कि ऐसे अलौकिक दावों पर विश्वास करने वाले बस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं।
हाँ, और डॉक्टर कीनर ने सिर्फ हवा में ये आंकड़े नहीं उछाले हैं, उन्होंने बाकायदा ऐसे मामलों का डॉक्यूमेंटेशन किया है जिनके चश्मदीद गवाह आज भी जिंदा हैं।
सही बात है। जैसे कैमरून वाली वो घटना ही ले लीजिए,
वो ओलिव नाम की बच्ची वाली।
हाँ ओलिव, वो सिर्फ 6 साल की थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया था। 8 घंटे बीत चुके थे।
8 घंटे? मेडिकल साइंस के हिसाब से तो कोई चांस ही नहीं बचता।
कोई चांस नहीं, लेकिन फिर पादरी आंद्रे ने वहां आकर प्रार्थना की और वो बच्ची सच में जीवित उठी। और डॉक्टर कीनर ने सालों बाद खुद इस केस को फॉलो अप किया और पाया कि वो बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ जीवन जी रही थी।
ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और मजे की बात यह है कि स्रोत में ये कोई इकलौता मामला नहीं है। कांगो के भी कई उदाहरण दिए गए हैं जो इससे भी ज्यादा हैरान करते हैं।
हाँ, वो दाई वाला केस, मामा जीन का।
एग्जैक्टली। एक बच्ची मरी हुई हालत में पैदा हुई थी, गर्भनाल उसके गले में फंसी थी, शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, हालात इतने खराब थे कि बच्ची का पिता बाहर उसके लिए ताबूत बना रहा था। सोचकर ही सहरन होती है।
लेकिन प्रार्थना के बाद वो बच्ची जीवित हो गई।
उन्होंने उसका नाम मिलग्रेस रखा, मतलब 1000 गुना कृपा। और एक और केस था थेरेस नाम की बच्ची का, 2 साल की थी, उसे जहरीले सांप ने काटा था और बिना किसी एंटी वेनम के वो सिर्फ प्रार्थना से ठीक हो गई।
और सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति से जुड़े चमत्कारों का भी जिक्र है। जैसे पापुआ न्यू गिनी में जब भयंकर सूखा पड़ा था, एक कुआं पूरी तरह सूख कर कीचड़ बन चुका था, लेकिन प्रार्थना सभा की अगली ही सुबह वो कुआं साफ पीने के पानी से पूरा भर गया।
चीन में भी वॉचमैन नी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था ना?
हाँ, उन्होंने एक स्थानीय परंपरा को चुनौती दी और प्रार्थना के तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और नाइजीरिया का वो डॉक्टर इमैनुअल टॉपसन वाला केस तो और भी दिलचस्प है।
वो छठ बनाने वाला?
हाँ, पूरे इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन उनके घर के ऊपर 4 दिन तक एक बूंद पानी नहीं गिरा ताकि उनके घर की छत का काम पूरा हो सके।
अब देखिए, ये सब सुनकर किसी के भी दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठेगा
कि ये सब अविकसित देशों में ही क्यों होता है।
एग्जैक्टली। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ये दावे पापुआ न्यू गिनी, कांगो या कैमरून जैसी जगहों से आ रहे हैं? मतलब कोई ये भी तो कह सकता है ना कि जहां अच्छे अस्पताल या मॉडर्न साइंस नहीं है, वहां लोग हर अजीब चीज को चमत्कार मान लेते हैं।
ये बहुत ही वैलिड सवाल है, और डॉक्टर कीनर ने इस आलोचना को बहुत ही गहराई से टैकल किया है। उन्होंने साफ कहा है कि चमत्कार कभी भी मेडिकल तकनीक का विकल्प नहीं होते।
मतलब कोई जादुई इलाज नहीं है कि अस्पताल बंद कर दो।
बिल्कुल, जहां मेडिकल साइंस मौजूद है वहां उसका पूरा इस्तेमाल होता है। उन्होंने वो कनाडा की नर्स सारा स्पीयर का केस बताया है जो कांगो में काम कर रही थी।
हाँ, वो केस बहुत मार्मिक था।
एक गर्भवती महिला की जान जा रही थी, मेडिकल टीम ने तुरंत ऑपरेशन किया, माँ तो बच गई, तो यहाँ साइंस ने अपना काम किया, लेकिन बच्चे को डॉक्टरों ने मृत मान लिया। फिर उस मृत बच्चे के लिए प्रार्थना की गई और 20 मिनट बाद वो बच्चा रोने लगा, वो जीवित हो गया।
तो कीनर का पॉइंट ये है कि चमत्कारों का मकसद लोगों को ये दिखाना है कि ईश्वर उनकी परवाह करता है, ना कि मॉडर्न साइंस को नीचा दिखाना।
एकदम सही, ये विज्ञान और चमत्कार को दुश्मन नहीं मानता।
लेकिन एक बात बताइए, अगर दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे दावे कर रहे हैं, इतने गवाह मौजूद हैं, तो ये जो पश्चिमी देशों का एजुकेशनल सिस्टम है या जो फिलॉसफी है, वो इसे इतनी आसानी से रिजेक्ट क्यों कर देती है?
यहीं पर तो चर्चा में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हम चिकित्सा से निकलकर सीधे दर्शन शास्त्र में घुसते हैं।
श्रोत में 18वीं सदी के दार्शनिक डेविड ह्यूम का बहुत बड़ा जिक्र है।
हाँ, ह्यूम वेस्टर्न फिलॉसफी का बहुत बड़ा नाम।
बिल्कुल, ह्यूम का जो सबसे मेन आर्ग्यूमेंट था वो ये कि समान मानवीय अनुभव चमत्कारों को असंभव साबित करता है। उनका कहना था कि चमत्कार प्राकृतिक नियमों को तोड़ते हैं, और चूंकि हमारे अनुभव में प्राकृतिक नियम कभी नहीं टूटते, तो चमत्कार हो ही नहीं सकते।
अगर कोई दावा करे भी, तो ह्यूम के हिसाब से वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसका दिमाग खराब है।
एग्जैक्टली।
पर ये तो क्लासिक कुएं के मेंढक वाली बात होगी ना, या फिर वो ब्लैक स्वान वाला फंडा।
हाँ, वो ब्लैक स्वान वाली बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। मतलब यूरोपीय दार्शनिकों ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सफेद बत्तखें देखी, तो अपने उस छोटे से एक्सपीरियंस के बेस पर डिक्लेयर कर दिया कि काली बत्तख का होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। जब ऑस्ट्रेलिया गए और काली बत्तख देखी तो पूरा थ्योरी क्रैश कर गया।
बिल्कुल, ह्यूम का तर्क भी यही था कि मेरे यूरोपीय दायरे में चमत्कार नहीं होते तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। ये तो पूरी तरह से गोल गोल घूमने वाला सर्कुलर लॉजिक है।
और स्रोत ये भी बताता है कि ह्यूम की प्रॉब्लम सिर्फ लॉजिक की नहीं थी, उनके अंदर बहुत गहरे पूर्वाग्रह भरे हुए थे।
नस्लवाद, सीधे शब्दों में कहें तो डॉक्टर कीनर बताते हैं कि ह्यूम का मानना था कि सिर्फ अज्ञानी और जंगली देश ही चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। वो गैर श्वेत लोगों की बुद्धिमानी को मानते ही नहीं थे।
हाँ, वो फ्रांसिस विलियम्स वाला किस्सा। वो एक बहुत ही टैलेंटेड जमैकन कवि थे, लेकिन ह्यूम ने उन्हें ये कहकर बेइज्जत कर दिया कि कोई भी तोता वो सब रट सकता है जो वो सुनता है।
इससे साफ पता चलता है कि ह्यूम उन लोगों के अनुभवों को इंसान का अनुभव ही नहीं मानते थे जो उनके गोरे यूरोपियन सर्कल से बाहर थे।
लेकिन ह्यूम ने तो यूरोप के अंदर हुए चमत्कारों को भी नहीं माना ना, वो पास्कल की भतीजी वाला वाक्या।
बिल्कुल, पास्कल की भतीजी को आंखों की कोई बहुत ही भयंकर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन एक पब्लिक प्रेयर के दौरान वो एकदम से ठीक हो गई।
और ये कोई अफवाह नहीं थी,
फ्रांस की रानी के पर्सनल डॉक्टर ने खुद इसे चेक किया था और सर्टिफिकेट दिया था।
हाँ, एकदम सर्टिफाइड मेडिकल मिरेकल था। पर ह्यूम ने इसे अपने डेटा से ही निकाल दिया।
क्यों? क्योंकि वो चमत्कार जेनसिनिस्ट विचारधारा के लोगों के बीच हुआ था,
और जेनसिनिस्ट वो कैथोलिक ग्रुप था जिसे उस टाइम की सरकार और चर्च दोनों पसंद नहीं करते थे,
और ह्यूम भी उनसे चढ़ते थे। तो मतलब उनका संदेहवाद किसी निष्पक्ष साइंस पर बेस नहीं था, वो बस खुद तय कर रहे थे कि कौन सच बोल सकता है और कौन नहीं।
ये तो बहुत ही बायस्ड अप्रोच है। तो चौपर 20वीं सदी में रूडोल्फ बुल्टमैन आते हैं। उनका लॉजिक तो और भी एक्सट्रीम था।
बुल्टमैन का कहना था कि जो इंसान बिजली का बल्ब जलाता है या टेलीग्राफ यूज करता है, वो चमत्कारों पर भरोसा कर ही नहीं सकता।
मतलब या तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर लो या अलौकिक बातों पर विश्वास कर लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
उस वक्त की वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में ये बात बहुत हिट हुई, लेकिन आज के हिस्टोरियंस जैसे फिलिप जेनकिंस और जस्टो गोंजालेस ने साबित कर दिया है कि बुल्टमैन 100% गलत थे।
हाँ, क्योंकि आज जो ग्लोबल साउथ है, मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ ईसाई धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है,
और वहाँ के लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, मॉडर्न टेक यूज करते हैं, लेकिन चमत्कारों पर भी पूरा विश्वास रखते हैं। बुल्टमैन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपने अकादमिक बुलबुले को ही पूरी दुनिया की सच्चाई मान लिया था।
देखा जाए तो आज के टाइम में भी हम में से बहुत लोग जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, वो कहीं ना कहीं बुल्टमैन के लॉजिक से अग्री कर जाते हैं। साइंस है तो चमत्कार कैसे? लेकिन दुनिया उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। खैर, अब इस फिलॉसफी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस उस असली किताब पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था,
गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और बुक ऑफ एक्ट्स।
हाँ, डॉक्टर कीनर ने ल्यूक की जो साहित्यिक संरचना, जो स्ट्रक्चर समझाया है, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है।
डॉक्टर कीनर बताते हैं कि ल्यूक सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे, वो एक बहुत बड़े लिटरेरी रणनीतिकार थे। पुराने टाइम में लिटरेचर ऐसे ही टाइमलाइन की तरह नहीं लिखा जाता था, उसमें एक गहरा पैटर्न होता था,
कैरेक्टर्स को कंपेयर करना, है ना।
एग्जैक्टली। ल्यूक ने मैरी और ज़काया की स्टोरी को बिल्कुल आमने सामने रखा। दोनों के पास फरिश्ता गैब्रियल आता है, दोनों डरते हैं, दोनों से एकदम असंभववादी किए जाते हैं,
लेकिन दोनों के रिएक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं,
और यहीं ल्यूक अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। ज़काया एक बहुत ही पढ़े लिखे बुजुर्ग पुजारी थे, उन्हें सारे धर्मग्रंथ पता थे, फिर भी उन्होंने डाउट किया तो उन्हें सजा मिली, वो गूंगे हो गए।
और दूसरी तरफ मैरी थी बहुत ही यंग, साधारण बैकग्राउंड से, उन्होंने बिना किसी लॉजिक के विश्वास कर लिया और कहानी में उन्हें सबसे ज्यादा तारीफ मिली।
तो ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं थी, ये उस वक्त के समाज को एक मैसेज था कि ईश्वर के राज्य में आपका सोशल स्टेटस या किताबी ज्ञान काम नहीं आता, आपका विश्वास काम आता है।
ये मुझे बिल्कुल आज के मॉडर्न सिनेमा की तरह लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म के सीक्वल में पहले पार्ट के सीन्स जानबूझकर रिपीट करता है।
बुक ऑफ एक्ट्स एक तरह से ल्यूक का सीक्वल ही तो था।
हाँ, जब दर्शक वो सीक्वल देखते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें समझ आ जाता है कि कहानी उसी हीरो के मिशन को आगे बढ़ा रही है।
और स्रोत में ऐसे कई पैरेलल सीन्स का डीप एनालिसिस है। ल्यूक ने यीशु, पीटर और पॉलुस तीनों की जर्नी को बिल्कुल एक जैसा दिखाया है। ठीक हो जाते हैं, पीटर की परछाई पड़ने से ठीक होते हैं और पॉलुस का तो सिर्फ रुमाल छूने से लोग चंगे हो जाते हैं।
तीनों मृतकों को जिंदा करते हैं, यरूशलेम और रोम की ऐतिहासिक यात्राएं करते हैं, और सबसे बड़ी बात, तीनों को उस यहूदी महासभा सेनहेड्रिन और रोमन अधिकारियों के सामने ट्रायल देना पड़ता है,
और हर बार उन्हें निर्दोष पाया जाता है। ये सब संयोग नहीं था।
तो ल्यूक बेसिकली ये स्थापित कर रहे थे कि जो सुपरनैचुरल पावर यीशु में थी, वो उनके जाने से खत्म नहीं हुई, वो पावर अब शिष्यों के थ्रू काम कर रही है।
ये अथॉरिटी ट्रांसफर करने का एक बहुत ही जीनियस तरीका था, रोमन साम्राज्य के उस क्रूर माहौल में फॉलोअर्स का विश्वास बनाए रखने के लिए। लेकिन डॉक्टर कीनर यहाँ एक वार्निंग भी देते हैं।
कैसी वार्निंग?
वो कहते हैं कि चमत्कार चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो सिर्फ अटेंशन खींचने के लिए होते हैं, वो एक चमकते हुए बिलबोर्ड की तरह हैं।
हाँ, भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन कोई भी मूवमेंट सिर्फ चमत्कारों के दम पर सदियों तक सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए तो कोई सॉलिड ग्राउंड स्ट्रेटजी चाहिए।
और यही एंट्री होती है एवेंजेलिज्म और गुणात्मक वृद्धि, मतलब मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रेटजी की।
तो ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में काम कैसे करता था?
स्रोत में रॉबर्ट कोलमैन के एक सिद्धांत की बात की गई है, एडिशन वर्सेस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसे आज के फाइनेंस की भाषा में कहूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क है।
ये फाइनेंस वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है इस चीज को समझने के लिए। डॉक्टर कीना इसे मैथमेटिक्स से समझाते हैं। मान लीजिए आप हर साल सिर्फ दो लोगों को अपने मूवमेंट में जोड़ रहे हैं, इसे एडिशन कहेंगे।
ऐसे तो नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन पॉलुस की स्ट्रेटजी अलग थी। वो सिर्फ फॉलोअर नहीं बना रहे थे, वो लोगों को ट्रेन कर रहे थे ताकि वो इंडिपेंडेंट लीडर बने और जाकर और लोगों को ट्रेन करें। ये है मल्टीप्लिकेशन।
मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे थे ह्यूमन नेटवर्किंग में।
एग्जैक्टली। कीनर बताते हैं कि इस कंपाउंड इफेक्ट से सिर्फ 15 साल में ये नंबर 1,10,00,000 तक पहुंच सकता है और 22 साल में तो ये 16 बिलियन पार कर जाएगा, जो आज की पूरी दुनिया की आबादी का भी डबल है।
बापरे।
पॉलुस सच में एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो उनके बिना भी ऑटो पायलट पर चलता रहे।
लेकिन अलग अलग शहरों में, अलग कल्चर्स में उन्होंने ये सब किया कैसे?
यही उनकी दूसरी मास्टर स्ट्रेटजी आती है, कंटेक्सचुअलाइजेशन, मतलब माहौल और ऑडियंस के हिसाब से खुद को ढाल लेना,
अनुकूलन।
पॉलुस एक ही रटा रटाया भाषण नहीं चिपकाते थे सबको। जब वो यहूदियों से बात करते तो उनके पुराने धर्म ग्रंथों का रेफरेंस देते, जब वो गांव के किसानों के पास जाते तो उन्हें बारिश और फसल के एग्जाम्पल से समझाते।
और एथेंस में तो उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया था। वो दार्शनिकों का हब था।
हाँ, एक्ट 17 में आता है।
हाँ।
वहां वो बिल्कुल एक फिलोसोफर की तरह बहस कर रहे थे। स्रोत में एक बहुत ही खास जगह का नाम है स्कूल ऑफ टायरानस।
वो क्या था?
उस टाइम ग्रीको रोमन सोसाइटी में दार्शनिक लोग दोपहर के टाइम जब सब आराम करते थे तो बड़े बड़े हॉल किराए पर लेकर पब्लिक डिबेट करते थे। अब क्योंकि लोग ईसाइयत को कोई नया धर्म नहीं बल्कि एक नई फिलॉसफी मान रहे थे,
तो पॉलुस ने भी वही फिलॉसफर वाला रोल पकड़ लिया।
बिल्कुल। उन्होंने इफिसस में स्कूल ऑफ टायरानस में लगातार लेक्चर्स दिए। वो सिर्फ चमत्कार करके भागने वालों में से नहीं थे। वो कोरिंथ में 18 महीने रुके, इफिसस में 2.5 साल रुके, उन्होंने कम्युनिटी के साथ डीप कनेक्शन बनाया।
और एक चीज जो उन्हें उस टाइम के ठगों से अलग करती थी वो था उनका पैसे के पीछे ना भागना। उस जमाने में बहुत लोग जादू टोना दिखाकर पैसा लूटते थे,
लेकिन पीटर और पॉलस ने इसे कमर्शियल होने ही नहीं दिया।
था ही नहीं, और शायद यही ऑनेस्टी लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी।
तो अगर हम इस पूरे सोर्स का निचोड़ निकालें तो चर्च का जो इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ इतिहास में, वो सिर्फ हवा में होने वाले चमत्कारों की वजह से नहीं था,
वो इस मल्टीप्लिकेशन, कंटेक्सचुलाइजेशन और उस डेडिकेशन का रिजल्ट था, जहां वो हर वर्ग के इंसान से उसी की भाषा में कनेक्ट कर रहे थे।
बिल्कुल, ये पूरी चर्चा हमें बस इतिहास नहीं पढ़ा रही, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे जो गहरे बायसेस हैं उनको एक्सपोज करती है।
सही कहा, हम अक्सर डेविड ह्यूम की तरह अपने खुद के बनाए हुए बौद्धिक बुलबुले में सेफ फील करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमने नहीं देखा वो हो ही नहीं सकता।
और कम्युनिकेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, अगर आपको अपना आइडिया दुनिया तक पहुंचाना है तो आपको सुनने वाले का बैकग्राउंड समझना ही होगा। एक साइज का जूता सबको फिट नहीं आता।
एकदम सही पॉइंट, और इसी थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव के एंड पर आ गए हैं। लेकिन खत्म करने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहूंगी।
बताइए।
मान लीजिए कि हम पहली सदी की इस पूरी स्टोरी में से चमत्कारों वाला जो अलौकिक पार्ट है उसे पूरी तरह हटा देते हैं। अब सोचिए, आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई वैचारिक या व्यावसायिक आंदोलन पॉलस की इस मल्टीप्लिकेशन और कंटेक्सचुअलाइजेशन की स्ट्रेटजी को एकदम कॉपी पेस्ट कर ले, तो क्या वो बिना किसी चमत्कार के भी पूरी दुनिया में वायरल होकर एक ग्लोबल रेवोल्यूशन ला सकता है? सोचिएगा जरूर इस बारे में। और हाँ, अगली बार जब कोई ऐसी बात सुने जो आपके लॉजिक में फिट ना बैठे तो उसे रिजेक्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। क्या पता आप उसी तालाब के किनारे खड़े हों जहां कोई काली बत्तख तैर रही है।